नमस्कार भारत, 8 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। फ्रांस में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर होगी सजा, जल्द आएगा कानून। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलना कितना संभव है?
अब अगर ये रिजर्वेशन सरकार को करना है तो संविधान में संशोधन चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में इसको संवैधानिक माना जाए, इसकी संभावना बहुत कम है।
जानेंगे असम में नागरिकता संशोधन विधेयक का क्यों हो रहा है विरोध।
ये लोग नहीं चाहते हैं कि धर्म पे नाम पर किसी फॉरेनर्स को यहाँ सिटीजनशिप दिया जाए, तो इसीलिए ये वापस किया जा रहा है।
सुनवाएंगे व्हाट्सएप के जरिए मिले लापता शख्स की रिपोर्ट भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। फ्रांस सरकार बिना अनुमति के होने वाले प्रदर्शनों में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। 8 हफ्ते से जारी हिंसक येलो वेस्ट प्रदर्शनों के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार एक बिल पेश करेगी जिसमें बिना अनुमति लिए प्रदर्शन करने वालों को सजा देने का प्रावधान होगा। इस बीच इटली के सत्ताधारी गठबंधन के 2 नेताओं ने येलो वेस्ट आंदोलन का समर्थन किया है। उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है कि नेता किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं। ये किम और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अब तक की 4थी मुलाकात होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे सम्मेलन पर बातचीत की खबरें आ रही हैं। सोमवार को कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर कोरिया का कोई बड़ा नेता ट्रेन से चीन जा रहा है। ब्रिटेन में ड्रोन उड़ाने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। सरकार ने ये कदम किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए हैं। दरअसल क्रिसमस से पहले ब्रिटेन के दूसरे सबसे व्यस्त गैटविक एयरपोर्ट को एक संदिग्ध ड्रोन की वजह से बंद करना पड़ा था। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री क्रिस ग्रेलिंग ने बताया कि इस मामले में पुलिस को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं।
The majority of drone users fly safely and responsibly, but we must ensure that the police have the right powers to deal with illegal use.
ड्रोन उड़ाने वाले ज्यादातर लोग सावधानी बरतते हैं, लेकिन अगर कोई ड्रोन का गैर कानूनी इस्तेमाल करता है तो इससे निपटने के लिए पुलिस को कुछ शक्तियां दी गई हैं। कुछ दिनों में पुलिस को ये पावर दे दी जाएगी। इसके तहत अगर पुलिस को किसी अपराध की आशंका होती है तो वो ड्रोन उड़ाने वाले से कागजात मांग सकती है। छोटे मोटे अपराध के लिए पुलिस ड्रोन उड़ाने वाले पर जुर्माना भी लगा सकती है। ये थे ब्रिटेन के परिवहन मंत्री के शब्द। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले के सरकारी गवाहों से मिलने दिया जाए। नेतन्याहू का कहना है कि वो उन गवाहों के साथ लाइव टीवी पर बैठकर बहस करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने बताया कि उनकी गवाहों से मिलने की मांग को 2 बार ठुकरा दिया गया। नेतन्याहू अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा,
दरअश्ती इमूत इमदे अमदीना।
अपने खिलाफ चल रही जांच के दौरान मैंने मांग की कि मुझे सरकारी गवाहों से मिलने दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा उनसे आमना सामना हो, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखूं और सच को सबके सामने ले आऊं। मैंने एक बार उनसे मिलने की मांग की, वो ठुकरा दी गई। फिर मैंने उनसे मिलने की मांग की, वो भी ठुकरा दी गई। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किंग ने 1 फरवरी को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। अध्यक्ष पद पर किम का कार्यकाल अभी 3 साल और बचा था। इस्तीफे की घोषणा करते हुए किम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, महामारी और शरणार्थी संकट जैसी चुनौतियों के बीच वर्ल्ड बैंक का काम पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। हालांकि किम ने इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बताई। किम के उत्तराधिकारी के चुनाव के वक्त ये बहस गर्म हो सकती है कि अब तक के सभी वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अमरीकी रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन में 2 कनाडाई नागरिकों की गिरफ्तारी की निंदा की है। दोनों नेताओं ने इस गिरफ्तारी को मनमाना बताया। ट्रंप और ट्रूडो ने पिछले महीने कनाडा में गिरफ्तार की गई चीनी नागरिक मेंग वांजू को लेकर चर्चा की। अमरीका चाहता है कि ईरान पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों को तोड़ने की अभियुक्त वांजू को प्रत्यर्पित किया जाए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। फ्रांस में पिछले 7 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस में प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा है कि अगर अब कोई बिना अनुमति के प्रदर्शन करेगा तो उसे सजा भुगतनी होगी। फ्रांस सरकार इसे लेकर एक नया कानून बनाना चाहती है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
फ्रांस में कई हफ्तों से जारी येलो वेस्ट आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। तेल के बढ़े दामों, महंगाई और कम वेतन जैसे मुद्दों को लेकर हो रहे ये प्रदर्शन काफी बार हिंसक भी हुए, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 1400 लोग घायल हुए। अब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार अनधिकृत प्रदर्शनों में लोगों के शामिल होने पर रोक लगाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक नया कानून बनाना चाहती है जिसके तहत प्रशासन की अनुमति के बिना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले और उस प्रदर्शन में शामिल होने वाले दोनों को सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा कि वो प्रदर्शनों में हिंसा होते हुए नहीं देखना चाहते। येलो वेस्ट आंदोलन के पहले प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, इसलिए वो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दूसरे प्रदर्शन के बारे में प्रशासन को बताया ही नहीं गया। उस प्रदर्शन में काफी हिंसा हुई थी। हम फ्रांस में प्रदर्शन करने के अधिकार को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए सरकार एक नया कानून लाना चाहती है जिसके तहत उन लोगों को सजा दी जाएगी जो बिना अनुमति के प्रदर्शन करते हैं। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री के शब्द। इस बीच इटली के सत्ताधारी गठबंधन के 2 नेताओं ने येलो वेस्ट आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। लुइजी डी माइयो ने येलो वेस्ट के आंदोलनकारियों से हार ना मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये एक नए यूरोप का उदय है। वहीं राइट विंग लीग के मात्तेओ साल्विनी ने कहा,
ho tutto il sostegno possibile per i francesi che educatamente rispettosamente stanno facendo presente।
मात्तेओ साल्विनी कह रहे थे कि मैं फ्रांस के उन लोगों का समर्थन करता हूं जो बहुत ही अच्छे और सम्मानजनक तरीके से अपने राष्ट्रपति को बता रही हैं कि वो जितनी जल्दी सही रास्ते पर आ जाए उतना बेहतर है। ये थे इटली के नेता मात्तेओ साल्विनी के शब्द। हालांकि इटली के दोनों ही नेताओं ने प्रदर्शनों में किसी भी तरह की हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता।
फ्रांस में बिना अनुमति के प्रदर्शनों पर होगी रोक। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। आज संसद में शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और आज ही इससे जुड़े बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? बीबीसी संवाददाता नीलेश धोत्रे ने यही सवाल केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले से पूछा।
तो ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसी तरह की मांग बहुत सालों से हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल हो, हरियाणा में जाट हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, ऐसे लोग हमेशा ये कंपैरिजन करते थे कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को मिलता है तो हमें मिलना चाहिए। तो इनको क्रिमिनल एरिया की पद्धत लगाकर 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उस फैमिली को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का निर्णय हो चुका है। ये मोदी सरकार का निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा क्रांतिकारक है और इससे समाज में एक यूनिटी निर्माण होने के लिए भी इसका अच्छा उपयोग होगा, क्योंकि दलितों पर हमेशा अत्याचार होते थे, दलित सवर्णों में हमेशा संघर्ष पैदा होता था और उनको आरक्षण मिलता है लेकिन हमको नहीं मिलता है। हमारे समाज में भी गरीबों की संख्या है, इसी तरह की मांग हमेशा होती रहती थी। तो जिनका सभी अमीरों को इसका फायदा होगा नहीं, लेकिन जो लोग क्रिमिनल है जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर उनको इसका फायदा होने वाला है। इसीलिए ये निर्णय बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत बार इस विषय को छेड़ा था कि SC ST और OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया देखकर उनको आरक्षण मिलना चाहिए।
कहीं ना कहीं 14% यूपी में जो ब्राह्मण वोट है उनको ध्यान में रखे हुए ये निर्णय लिया गया, ऐसे बोला जाता है। सवर्णों के वोट के लिए ये निर्णय लिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है।
मुझे लगता है कि वोट की कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। मोदी जी 2019 में चुनाव जीतने वाले उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सवर्णों को न्याय देने के संबंध में अगर निर्णय हो चुका है, चुनाव को सामने रखकर ये निर्णय नहीं हुआ हुआ है, बहुत दिनों से सरकार इसके बारे में विचार कर रही थी।
कोर्ट में ये किस तरह टिक पाएगा, कोर्ट में सबसे बड़ी चुनौती होगी इसको साबित करना?
कोर्ट में तो चुनौती अगर कोई देगा भी तो भी कोर्ट को एक बार कानून बन गया तो उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। जो कानून बना है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उसकी जिम्मेदारी कोर्ट पर होती है।
ये थे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आरक्षण को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये आरक्षण देना आसान होगा। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और नैलसार विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति फैजान मुस्तफा से बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने आरक्षण से जुड़ी कानूनी पेचीदगियों के बारे में पूछा।
इसमें ऐसा है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यानी रिजर्वेशन जो है उसके लिए एससी एसटी भी ये नहीं कह सकते कि हमें नेसेसरली अनिवार्य तौर पे रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन के में संविधान ये कहता है कि अगर राज्य उनके लिए रिजर्वेशन करेगा तो उसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब 10% ये रिजर्वेशन जो किया जा रहा है ये पहले भी 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उन्होंने, लेकिन इंदिरा सैनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। तो आज के दिन उस तरीके के रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर ये रिजर्वेशन सरकार को करना है तो संविधान में संशोधन चाहिए। संविधान में संशोधन के लिए आपके पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार इसमें कोई बहुत सीरियसली इस चीज को करना नहीं चाहती और उसको कोई चुनावी इससे फायदा हो सकता हो, उन्होंने सोचा होगा कि अपर कास्ट कंसोलिडेशन हमारे फेवर। लेकिन संवैधानिक तौर से इसके सुप्रीम कोर्ट में इसको संवैधानिक माना जाए इसकी संभावना बहुत कम है।
जैसे इसमें कहा गया है कि भाई सामान्य वर्ग के गरीबों, तो क्या उस सामान्य वर्ग में हिंदू मुसलमान सब आएंगे?
नहीं, सब आएंगे। इसका जो वर्ड होगा वो अपर क्लास एरिया में वो आएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है दिलनवाज कि आपको कोई भी रिजर्वेशन देने के लिए ये सोचा गया था कि वो कास्ट जिनका ऐतिहासिक तौर पर सदियों से शोषण हुआ है उन कास्ट को रिजर्वेशन दे के ऊपर लाया जाए। अब इसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि सोशल बैकवर्डनेस साबित हो। अपर कास्ट की सोशल बैकवर्डनेस साबित नहीं हो पाएगी और इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट 1992 में इंदिरा सैनी के केस में असंवैधानिक कह चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा शोषा छोड़ दिया गया जिसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर प्रश्न चिन्ह है। तो जाहिर है कि ये बात किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए कही गई है, क्योंकि ये कोर्ट में कितनी देर खड़ा होगा ये मुद्दा मुझे नहीं मालूम कि ये चल पाएगा।
लेकिन जैसा सरकार कह रही है संविधान बदल कर तो ये चल पाएगा?
संविधान भी जब बदला जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वो ये देखेगी कि क्या संविधान का मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ। तो क्योंकि समानता का अधिकार जो है वो मूलभूत ढांचे का हिस्सा है और समानता के अधिकार के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है।
क्या आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिल पाएगा आरक्षण, जानकारी दे रहे थे संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा। सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का फैसला तो कर लिया है, लेकिन जो अन्य जातिगत समूह आरक्षण की मांग करते रहे हैं उनका क्या होगा? गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुर्जर और हरियाणा में जाट समुदाय काफी समय से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सुनिए दिलनवाज पाशा की ये रिपोर्ट।
चुनावी मौसम में उठाए गए इस कदम को कई विश्लेषक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन इससे सवाल भी उठे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे जाति समूहों के सवाल और भी प्रखर हो गए हैं। राजस्थान में गुर्जर समुदाय के आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले कर्नल करोड़ सिंह बैसला कहते हैं कि समूची आरक्षण व्यवस्था के पुनः मूल्यांकन की जरूरत है।
आरक्षण नीडी को दिया जाना चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए और जरूरतमंद को आरक्षण मिलना चाहिए। सारे सिस्टम का एक बार रिव्यू हो, जो लाभान्वित हो गए हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए और जिनको जरूरत है उनको इंक्लूड किया जाए।
वहीं जाट समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले यशपाल मलिक का मानना है कि उनकी ओबीसी में आरक्षण की मांग बरकरार रहेगी। की?
नहीं नहीं, वो तो स्टिल पेंडिंग है। हमने तो ओबीसी में रिजर्वेशन डिमांड है, हम ओबीसी में है ऑलरेडी। जब हम किसी स्टेट में ओबीसी है तो हम जनरल तो काउंट हो नहीं सकते। इनकी जो जो परिभाषा है जिसमें 10% दे रहे, हम उसमें भी कवर अप नहीं हो सकते। ये तो एक अजीब सी सिचुएशन मराठों के भी आएगी, क्योंकि मराठों को स्पेशल बैकवर्ड रिजर्वेशन दे दिया है स्टेट में, अब वो जनरल में कैसे कवर होंगे? तो ये बहुत सी ऐसी लीगल समस्याएं हैं जिन पे समस्याएं आएंगी।
यशपाल ये भी कहते हैं कि देश में ओबीसी समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण के लिए आंदोलन और तेज होगा।
देखिए, अभी एक बड़ी फुसफुसाहट जिसको कहते हैं ना इनिशियल डिमांड, वो पूरे देश में ओबीसी वर्ग की चल रही है, क्योंकि ओबीसी की देश में जनसंख्या है 7%। तो लोगों का मानना यह है कि एससी एसटी की जनसंख्या 22% है, उनको 22% मिला हुआ है, और ओबीसी की जनसंख्या 60% है, उसको 27% मिला हुआ है। अब एक नई डिमांड रेज होगी कि हमें 27% को 60% क्यों नहीं।
सरकार के गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को जहां एक सोच समझकर उठाया गया चुनावी कदम कहा जा रहा है, वहीं इससे कई सवाल उठे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के आरक्षण के फैसले को चुनावी स्टंट माना जा रहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर भाजपा को 15 साल बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, और उसकी एक वजह सवर्ण समाज की बेरुखी को माना जा रहा है। इसी राज्य में एससी एसटी कानून में हुए बदलाव के दौरान सबसे अधिक हिंसा भी देखने को मिली थी। पेश है भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था सपाक्स पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी चुनाव में कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन माना जा रहा है कि 15 साल से सत्ता में काबिज भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें थीं जिसमें लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया और जो भाजपा की हार का कारण बना। अब जबकि केंद्र सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का फैसला कर लिया है, तो सपाक्स के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी सभी के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं।
आरक्षण की सीमा तो 50% है ही, इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण, सभी आरक्षण की पूरी नीति को रिव्यू करके उस पर लागू करना चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि इनको वाकई गरीबों को लाभ देना है तो ये कहना चाहिए इनको कि आर्थिक आधार पर सभी गरीबों के लिए आरक्षण समान रूप से लागू होगा, पिछड़ों में भी लागू होगा, एससी एसटी में भी लागू होगा।
वहीं सवर्ण समाज पार्टी इसे चुनावी स्टंट के तौर पर देख रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें 10% आरक्षण न काफी लग रहा है। सवर्ण समाज पार्टी की अध्यक्षा अर्चना श्रीवास्तव कहती हैं,
ये फैसला पब्लिक को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए हुआ है, और एक्चुअली में सवर्णों को आरक्षण देने की 10% की बात अगर ये लोग करते भी हैं, तो पहली बात तो ये सिर्फ बेबुनियादी है, क्योंकि कहीं पर भी आरक्षण का प्रावधान सवर्णों के लिए नहीं है संविधान में, तो ये लॉलीपॉप है। तात्कालिक प्रभाव से ये लोकसभा को अपने कब्जे में करने के लिए जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास है। दूसरी बात ये है कि अगर आरक्षण इन्हें देने की बात करना ही है, ये संविधान में संशोधन लाकर बिल पास कराने की बात भी करते हैं, तो जब सबको हर कास्ट की परसेंट वाइज मिलता है तो फिर सवर्णों को भी परसेंटेज वाइज मिलना चाहिए, 10% क्या होता है।
वहीं केंद्र सरकार का यह फैसला सवर्ण समाज के लोगों के लिए हैरानी भरा है, लेकिन वह भी इस पर ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। अमिताभ पांडे कहते हैं,
सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला, मैं ये समझता हूँ कि पूरी तरह ये एक राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया है, बाकी इससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह से मेरा तो ये कहना है कि आरक्षण को जातिगत खानों में बांटना ये ठीक बात नहीं है। इसकी बजाय आरक्षण का आधार केवल आर्थिक होना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर।
वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही राजलक्ष्मी का मानना है कि अगर सही तरीके से इसे लागू किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और उन्हें खुद इसका फायदा मिल सकता है।
मैं सवर्ण समाज से आती हूँ, मुझे लगता है कि यह लागू होता है तो निश्चित तौर पर मुझे फायदा होगा, लेकिन ऐसा न हो कि यह मामला भी राजनीतिक ही रह जाए।
मध्य प्रदेश देश का वह राज्य है जहाँ पर दलित संगठनों द्वारा 2 अप्रैल को बुलाए गए बंद के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सवर्णों के संगठन भी प्रदेश में आगे आ गए, और जहां वह एक तरफ एससी एसटी कानून में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वह जाति आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की भी मांग लगातार कर रहे थे। हाल में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव में सवर्ण समाज के लोगों के रुख के बाद यह फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन अभी यह बताना मुश्किल है कि इसका फायदा पार्टी को कितना मिलेगा। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए पड़ोसी देशों से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के बिल को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद असम में भाजपा के साथ सरकार में शामिल स्थानीय दल असम गण परिषद गठबंधन से बाहर भी हो गया है। असम में इस कानून को लेकर विरोध क्यों होता रहा है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात की असम के सामाजिक कार्यकर्ता हफीज अहमद से।
स्पेशली असम ये मुद्दा लेकर बहुत सेंसिटिव है, बांग्लादेशी मुद्दा लेके, और असम के ज्यादातर लोग सिकुलर होते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि धर्म पे नाम पर किसी फॉरेनर्स को यहाँ सिटीजनशिप दिया जाए, तो इसीलिए ये अपोज किया जा रहा है। और दूसरा बात है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। ये जो असम में जो असमिया भाषी और बांग्ला भाषी है, तो असमिया भाषी अभी है 48%, बांग्ला भाषी है 31%। धीरे धीरे असमिया भाषी लोग कमती हो जा रहा है और बांग्ला भाषी इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये लोगों का बहुत खोप है, लोगों का एंगर एंड लैंग्वेज है लोगों का बीच कि ये क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द असमीज कल्चर एंड लैंग्वेज, क्या त्रिपुरा की तरह हो जाएगा कि सारी बंगाली लोग आके हमारा यहाँ के जो कल्चर है जो लैंग्वेज है उसको इन्वेट कर लेंगे। मुझे लगता है ये दोनों कारण है, और दूसरा कारण ये भी है कि बीजेपी का जो गेम प्लान है कि सारी अगर हिंदू ज्यादा हो जाते हैं सारे हिंदू हमारा वोटर हो जाएगा, तो दूसरा जो पार्टी है जो सिकुलर पार्टी है वो लोग ये नहीं चाहते।
तो अभी क्या कोई प्रोटेस्ट वगैरह प्लान है वहाँ पर असम में, इसको लेकर के आपको जानकारी है कुछ?
प्रोटेस्ट तो चल रहा है, आप जानते हैं दिल्ली में ही नेकेट होके कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और यहाँ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने भी प्रोटेस्ट कर रहे है, और कृषक मुक्ति संग्राम समिति जो है उसके साथ कुछ 70 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें माइनॉरिटीज का ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया की ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन है, सौरसा साहित्य परिषद भी है, तो ऐसा कुछ सारे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होके अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये आंसू का तीनों तरफ का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक हो रहा है जो इंटेलेक्चुअल है लेड बाय डॉक्टर हिरेन गुहा है, उदयदित्य फरालिया ऐसा जो लोग है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। दूसरा एक ग्रुप है आंसू का, जो ग्रुप है आंसू का साथ भी कुछ 29 ग्रुप्स है इथनिक ग्रुप्स, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा है, और कृषक मुक्ति संग्राम समिति का जो है 70 ऑर्गेनाइजेशन दे आर प्रोटेस्टिंग टुगेदर, इसमें माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, मुस्लिम लोग भी है, सारे लोग मिलके वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सचमुच कोई बांग्लादेशी कोई फॉरेनर्स असम में आके बैठे।
असम में नागरिकता बिल का विरोध, अधिक जानकारी दे रहे थे हफीज अहमद। अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है, और अखबारों के साथ गुरप्रीत सैनी मौजूद है स्टूडियो में। गुरप्रीत, जाहिर सी बात है कि आज पहले पन्ने पे सिर्फ आरक्षण और आरक्षण और आरक्षण ही होगा जी, तो क्या कहते हैं अखबार?
इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है चुनाव पर नजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मोदी सरकार का आरक्षण
जी।
ये इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है और सभी अखबारों में ये दिख रही है। एनबीटी में लिखा गया है मंडल 2.0।
हाँ, नवभारत टाइम्स में जैसे आपने मंडल 2.0 कहा, वहीं एक इन्होंने हेडिंग लगा रखी है हेडिंग के जस्ट नीचे के, बरसों पहले वीपी सिंह ने मंडल कार्ड से राजनीति बदली थी, अब मोदी रिजर्वेशन ही बदलना चाहते हैं, क्या वो कामयाब होंगे, फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है
जी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इंदिरा गांधी को अपनी क्षमता साबित करने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने जनसत्ता में ये खबर है, और इसके मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन धर्म और जाति आधारित राजनीति के खिलाफ है।
ये इन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कहा है सर
जी, उन्होंने मतलब ओवरऑल जाति आरक्षण, धर्म आरक्षण और इन सब चीजों को लेकर कहा है। और इसके अलावा असम की भाजपा सरकार से एजीपी ने समर्थन वापस लिया, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है
जी।
इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में उठाऊं अगर, तो उसमें लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान, ये खबर है। और एक बड़ी खबर सभी अखबारों में ये दिख रही है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचा, 71 साल में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती,
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की जमीन को हराया, जमीन पर हराया है। और नवभारत टाइम्स में भी मेन लीड जो है वो उन्होंने इसे बनाया है, और रिजर्वेशन वाली स्टोरी उसके जस्ट नीचे है, और इसका शीर्षक है कि 71 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को घर में दी मात जी। गुरप्रीत
जी, अब मैं दूसरा अखबार उठाऊं तो अखिलेश और मायावती से जुड़ी खबर भी कई अखबारों में दिख रही है। मायावती, माया का अखिलेश को फोन, घबराए नहीं, ये सुर्खी एक अखबार की है।
और इसी से जुड़ी मतलब मामला वही है जो आजकल चल रहा है, अवैध खनन, कथित अवैध खनन को लेकर, उसी पे एनबीटी में एक हेडिंग लगाई है सीबीआई के हवाले से कि सीएम रहते अखिलेश ने एक ही दिन में दे दिए थे 13 पट्टे।
जी, ये खबर भी कई अखबारों में है।
जी,
इसके अलावा खत्म कानून पर गिरफ्तारी की तो अफसरों को जेल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धारा आईटी की धारा 66A को लेकर।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए फैलती अफवाहें आज आम बात हो गई हैं, लेकिन बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक लापता शख्स को ढूंढा गया है। राजस्थान के जालौर जिले के झाब गांव के महावीर सिंह चौहान 20 साल बाद व्हाट्सएप के जरिए अपने परिवार से मिल पाए हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की ये खास रिपोर्ट।
पिछले 20 साल से महावीर सिंह चौहान अपने परिवार से करीब 2000 किलोमीटर दूर रहे हैं। राजस्थान के जलोरे जिले के झाब गांव और जमींदार परिवार के इकलौते बेटे मुंबई में धातु का व्यापार करने निकले थे। उनके चचेरे भाई हितेंद्र सिंह ने बीबीसी को बताया,
कोई बॉम्बे में बिजनेस में थे, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ऐसा हुआ और इनको यूं लगा कि मैं फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पैर में क्या जवाब दे पाऊंगा, इस वजह से शायद ऐसा हुआ। 5 साल तक हमने उसको ढूंढने, 5-6 साल तक, और अभी भी हम अपने सोर्सेज से कोशिश करते हैं लेकिन कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी।
1998 से महावीर सिंह चौहान ने अपने परिवार से संपर्क नहीं रखा। वो बेंगलुरु में ड्राइवर, फोटोग्राफर, सुपरवाइजर का काम करते रहे, लेकिन शनिवार की सुबह उन्हें दुर्बलापुर में एक गुलाब के फूल के खेती में उनके साथ काम करने वाले रवि ने देखा कि वो बहुत बीमार हो गए हैं। उनका दायां हाथ और पैर अकड़ गए थे। दुर्बलापुर के अस्पताल ने उन्हें निमहांस भेजा। रवि ने उनके दोस्त किशोर कुमार दफ्तरी को बताया। बीबीसी से बातचीत में किशोर कुमार दफ्तरी ने कहा,
तो वो और दूसरा क्या, वो जंगल टाइप का एरिया है तो उधर वो कीड़े मकोड़े नीचे चलते है ना, तो वो थोड़ा नीचे ही सोते थे क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता था, तो बेड पे नहीं सोते थे, नीचे चटाई पे बिस्तर वगैरह लगा के वैसे सोते थे। तो वो कुछ कीड़ा मकोड़ा काट लिया, वो कोई जहरीला, उसके कारण वो थोड़ा हाथ में सूजन आ गया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। वो चोट लगी तो वो क्या है, रात को 2-3 बजे 4 बजे कब गिरे हो गए, और जो सुबह 8:30-9 बजे उनको देखा गया, जब वो वहाँ पे जो रवि था ना, वो बगीचे वाले, वो तब देखने के बाद उनको वहाँ हॉस्पिटल में ले आए, तो उसके कारण वो थोड़ा जाम जैसा कुछ हो गया।
जब महावीर सिंह चौहान ने अपने परिवार को छोड़ा था तो उनका बड़ा बेटा 4 साल का था। आज प्रद्युमन सिंह भावुक हो जाते हैं और बात नहीं कर पाते हैं। उन्होंने उनको बताया,
बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, मतलब जिस चीज की उम्मीद छोड़ दी थी वो मिलना बहुत बढ़िया बात होती है, उसी से बहुत अच्छा लगा।
बहरहाल हितेंद्र सिंह एक दिलचस्प बात बताते हैं,
ये जो आज आफ्टर 20 इयर्स जो मिलन हो पाया है हमारा घर परिवार से आज इतने लंबे टाइम के बाद, ये थैंक टू गॉड और सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं उसका मिसयूज ज्यादा होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा हमारी फैमिली के लिए और हमारे सराउंडिंग एरियाज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लॉट ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया।
इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी फुटबॉल से। स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अपने देश के लिए सबसे अधिक गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी और डीडीआर ड्रोगबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छेत्री ने एएफसी एशियन कप में थाईलैंड के खिलाफ 2 गोल करने के साथ ही इन 2 दिग्गज फुटबॉलरों को पीछे छोड़ दिया है। उनके इन 2 गोल की बदौलत भारत ने एएफसी एशियन कप में 32 साल बाद पहली जीत दर्ज की है। भारत ने थाईलैंड को 4-1 से हराया। और अब बात टेनिस की। जापान की केई निशिकोरी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दूसरी सीड निशिकोरी ने रविवार 6 जनवरी को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में रूस के डेनिल को 6-4, 3-6, 6-2 से मात दी। इस जीत के साथ ही उन्होंने डेनिल से पिछले साल टोक्यो में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
समाचार। फ्रांस सरकार बिना अनुमति के होने वाले प्रदर्शनों में लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। 8 हफ्ते से जारी हिंसक येलो वेस्ट प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है कि नेता किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं। ये किम और चीन के राष्ट्रपति के बीच अब तक की 4थी मुलाकात होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब किम जोंग उन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2रे सम्मेलन पर बातचीत की खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन में ड्रोन उड़ाने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।